नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के पूर्णिया जिले में राज्य के लिए 40,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना से किसानों को बेहतर मूल्य सुनिश्चित होगा। प्रधानमंत्री ने पूर्वी भारत में अवैध घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री ने कोलकाता में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दौरान सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारी बढ़ाने पर जोर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के हजारीबाग में 3 शीर्ष नक्सलियों के मारे जाने पर सुरक्षा बलों की सराहना की। रेल मंत्रालय ने 1 अक्टूबर से IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से सामान्य आरक्षण खुलने के पहले 15 मिनट के दौरान टिकट के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य किया। और भारत की वैशाली रमेश बाबू ने उज्बेकिस्तान में फिडे महिला शतरंज ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट जीता। उन्होंने महिला कैंडिडेट्स 2026 के लिए भी क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के पूर्णिया जिले में राज्य के लिए 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पूर्णिया के गुलाबबाग स्थित शीशाबाड़ी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार बिहार के लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है।
बिहार के विकास के लिए करीब 40,000 करोड़ रुपया की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। रेल, एयरपोर्ट, बिजली, पानी से जुड़ी ये परियोजनाएं सीमांचल के सपनों को पूरा करने का माध्यम बनेगी। आज यहाँ 40,000 से ज्यादा लाभार्थियों को पीएम आवास योजना के तहत पक्का घर भी मिला है। इन 40,000 परिवारों के जीवन में आज एक नई शुरुआत हुई है।
प्रधानमंत्री ने नवनिर्मित पूर्णिया हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और हवाई अड्डे से उड़ान सेवा शुरू की। उन्होंने कहा कि अब पूर्णिया देश के विमानन मानचित्र पर आ गया है। इस हवाई अड्डे के साथ पूर्णिया से देश के अन्य हिस्सों के लिए घरेलू उड़ान सेवाएं शुरू हो जाएंगी। श्री मोदी ने बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का भी शुभारंभ किया। श्री मोदी ने कहा कि बोर्ड की स्थापना से मखाना उत्पादन को काफी बढ़ावा मिलेगा और इस क्षेत्र में बिहार की वैश्विक उपस्थिति मजबूत होगी।
बिहार के किसानों के पास आय का एक साधन मखाने की खेती भी रहा है। मैंने बिहार के आप लोगों से राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के गठन का वायदा किया था। केंद्र सरकार ने कल ही राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मखाना किसानों को मखाने की अच्छी कीमत मिले, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड इसके लिए निरंतर काम करेगा। मखाना सेक्टर के विकास के लिए हमारी सरकार ने करीब 450 करोड़ रुपए की योजना को मंजूर किया।
रेल क्षेत्र में प्रधानमंत्री ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया तथा नई ट्रेनों को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे क्षेत्र को रेल सेवा से जोड़ा जा रहा है।
इस पूरे क्षेत्र को आधुनिक हाईटेक रेल सेवाओं से भी जोड़ा जा रहा है। आज अररिया गलगलिया नई रेल लाइन का उद्घाटन हुआ है। विक्रमशिला कटरिया नई रेल का शिलान्यास भी किया गया। बक्सल भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के मोकामा मुंगेर सेक्शन को मंजूरी दे दी है। इससे मुंगेर जमालपुर भागलपुर जैसे इंडस्ट्रियल हब को बहुत फायदा होगा। सरकार ने भागलपुर दुमका रामपुर हाट रेल लाइन के दोहरीकरण को भी मंजूरी दे दी है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार बिहार, पश्चिम बंगाल और असम को घुसपैठियों से मुक्त कराने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि दोनों दलों से बिहार के सम्मान और पहचान को खतरा है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उनकी सरकार बिहार को बिजली उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहत प्रधानमंत्री ने आज भागलपुर जिले के पीरपैंती में 2400 मेगावाट क्षमता वाले थर्मल पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूह के क्षेत्र में बिहार में हो रहे कार्यों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने GST के नेक्स्ट जेन सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि नवरात्र से यह GST की घटी हुई दरें लागू हो जाएंगी। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पूर्णिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय विजय दुर्ग में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन 2025 में शामिल हुए। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों के साहस और राष्ट्र निर्माण में उनके महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री ने देश के भविष्य के लिए तैयार भारतीय सशस्त्र बल दृष्टिकोण 2047 दस्तावेज का अनावरण भी किया। सम्मेलन का विषय सुधारों का वर्ष भविष्य के लिए परिवर्तन है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन और झारखंड पुलिस की संयुक्त टीम ने हजारीबाग में नक्सल विरोधी अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस अभियान में 1 करोड़ रुपए का इनामी कुख्यात नक्सली कमांडर सहदेव सोरेन मारा गया है। सहदेव सोरेन के साथ 2 अन्य इनामी नक्सली रघुनाथ हेम्ब्रम और बीरसेन गंजू भी मारे गए हैं। गृह मंत्री ने बताया कि इस अभियान के बाद उत्तरी झारखंड के बोकारो क्षेत्र से नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हो गया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जल्द ही पूरा देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि 1 अक्टूबर से सामान्य आरक्षण खुलने के पहले 15 मिनट के दौरान केवल आधार प्रमाणित उपयोगकर्ता ही IRCTC की वेबसाइट और उसके ऐप के माध्यम से टिकट बुक कर सकेंगे। वर्तमान में ये पाबंदी केवल तत्काल बुकिंग पर लागू है। मंत्रालय ने कहा है कि यह निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि टिकट आरक्षण प्रणाली का लाभ आम उपयोगकर्ता तक पहुंच सके और इसका दुरुपयोग न हो। हालांकि मंत्रालय ने कहा है कि वर्तमान में भारतीय रेलवे के कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली काउंटरों के माध्यम से सामान्य आरक्षित टिकटों की बुकिंग के समय में कोई बदलाव नहीं हो गया। सामान्य आरक्षण खुलने के 10 मिनट के दौरान रेलवे के अधिकृत टिकट एजेंटों को पहले की तरह आरक्षित टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों को स्थगित कर दिया है। किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति वक्फ बनाने से पहले 5 साल तक मुस्लिम धर्म का पालन करने की अनिवार्यता वाले प्रावधान पर रोक लगा दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि ये प्रावधान तब तक निलंबित रहेगा जब तक राज्य सरकारें इस शर्त के निर्धारण के संबंध में कोई समुचित नियम नहीं बना लेती हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज वक्फ संशोधन अधिनियम पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया।
सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच ने जो तय किया है, ये हमारा लोकतंत्र के लिए भी बहुत अच्छा शुभ संकेत है। दूसरी बात यह है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो प्रावधान है वो संपूर्ण रूप से पूरे मुस्लिम कौम के लिए फायदा पहुंचाने वाला है और वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो मिसयूज होते थे वो भी बंद हो जाएगा।
इस स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GST सुधारों की अगली पीढ़ी की घोषणा की थी। इस महीने की 3 तारीख को उनका ये सपना साकार हुआ जब GST परिषद ने नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई क्षेत्रों में कर की दरें कम कर दी। आज हम कुछ ऐसी वस्तुओं पर नजर डालते हैं जिन पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
नए GST सुधारों के तहत सरकार ने कई क्षेत्रों में कर कटौती की घोषणा की है जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी। दस्ताने, खेल किट, सामान्य शारीरिक व्यायाम जैसे उपकरण तथा मछली पकड़ने के सामान पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में रांची के इंद्रनील भारती ने बताया कि ये सुधार खेल प्रेमियों के लिए फायदेमंद साबित होंगे।
गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है ना, वो काफी अच्छा स्टेप है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जो एथलीट्स हैं, जो महंगी स्पोर्टिंग आइटम्स है वो अफोर्ड नहीं कर पाते, काफी एथलीट्स फाइनेंशियली इतने मजबूत नहीं होते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा कि वो अफोर्ड कर पाएंगे।
इसके अलावा GST परिषद ने कृषि आधारित लकड़ी उत्पाद जैसे बांस के फर्श, बैरल तथा लकड़ी के टब आदि पर भी कर की दर को 5% कर दिया है, जो पहले 12% हुआ करती थी। आने वाले मुख्य त्योहारों से पहले GST में किए गए इन सुधारों से आम आदमी पर कर का बोझ कम होगा और देश में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। रोहन के साथ दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
जनसेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। सेवा पर्व में हम प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से प्रत्येक नागरिक के जीवन में बदलाव लाया है।
स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया हमने देश से अपने वादा, वादा कर लिया हमने।
स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुए 11 साल बीत चुके हैं। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि लाल किले की प्राचीर से शौचालय क्रांति की बात होगी, लेकिन 15 अगस्त 2014 के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कर दिखाया।
स्वच्छ भारत का एक अभियान इसी 2 अक्टूबर से मुझे आरंभ करना है और 4 साल के भीतर भीतर हम इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और एक काम तो मैं आज ही शुरू करना चाहता हूँ और वो है हिंदुस्तान की सभी स्कूलों में बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट हो, तभी तो हमारी बच्चियां स्कूल छोड़ करके भागेगी नहीं।
प्रसिद्ध नेचर पत्रिका में हाल ही में एक शोध निबंध प्रकाशित हुआ है। इस शोध को कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान और ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी ने भारत में खुले में शौच के खत्म होने के बाद आ रहे बदलावों पर अध्ययन किया। इस अध्ययन से पता चलता है कि शौचालय क्रांति से शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। शोध पत्र में कहा गया है कि खुले में शौच की कुरीति के खत्म होने से सालाना करीब 70,000 शिशुओं की मृत्यु रोकने में सफलता मिली है। कई महिलाओं की जिंदगी इससे बदल चुकी है। ऐसी ही एक महिला है चमोली जिले की किरण।
आजकल हमारे गांव में सभी महिलाएं सुरक्षित हैं, जो खुले में शौच नहीं जाती है। पहले हम खुले में जाते थे, जंगलों में जाते थे या खेतों में जाते थे, अब वैसा भय नहीं है। जो शौचालय अभियान चलाया गया है उसमें हर महिला और बच्चे परिवार वालों को सुविधाएं हैं।
स्वच्छता अभियान की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 12 करोड़ घरों में शौचालय बन चुके हैं। इसके साथ ही देश खुले में शौच की प्रवृत्ति से मुक्त हो गया है। हर घर नल जल योजना के तहत देश के करीब 78% घरों तक पाइप के जरिए साफ पानी की आपूर्ति की जा रही है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश के शहरों को 2026 तक कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तो स्वच्छता का अभियान के तहत वार्षिक स्तर पर स्वच्छता सर्वेक्षण हो रहे हैं। इसका असर है स्वच्छता के मानचित्र पर भारत की तस्वीर अब पहले से बहुत बदल चुकी है।
स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 इस महीने की 17 तारीख से शुरू होने जा रहा है। आज नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की कि इस वर्ष ये अभियान स्वच्छता उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान देशभर में बड़े पैमाने पर स्वच्छता गतिविधियां चलाई जाएंगी। भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू ने उज्बेकिस्तान में फिडे महिला ग्रैंड स्विस का खिताब जीत लिया है। वैशाली ने अगले साल होने वाली स्विस चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। अंतिम दौर में वैशाली और चीन की ग्रैंड मास्टर टेन झोंगियों के बीच मुकाबला ड्रॉ रहा। भारत के आनंद कुमार वेल कुमार ने स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में मच्छर जनित रोगों के जोखिम और उपचार पर विस्तृत चर्चा प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 बजे से आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का सूचकांक आज मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 119 अंक गिरकर 81,786 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 45 अंक गिरकर 25,069 पर बंद हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्णिया जिले से बिहार के लिए 40,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना से किसानों को बेहतर मूल्य सुनिश्चित होगा। प्रधानमंत्री ने पूर्वी भारत में घुसपैठ से उभरी जनसांख्यिकी समस्याओं को गंभीर बताया, कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री ने कोलकाता में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दौरान सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारी को बढ़ाने पर जोर दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने झारखंड के हजारीबाग में 3 शीर्ष नक्सलियों के मारे जाने पर सुरक्षा बलों की सराहना की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।